لشکروں کے رب یہوہ خدا، تو نے اپنے کلام میں کہا ہے کہ تو مجھے پکار تو میں تجھے جواب دوں گا اور تجھ پر بڑی بڑی گہری باتیں ظاہر کروں گا۔ خدا باپ، آج اس صبح میں اس خداوں خدا حسین محفل میں جو خداوں خدا تیرے نام سے ہم سب اکٹھے ہیں، ہم سب کی رہنمائی کر تاکہ جو کچھ تیرے کلام میں سے سیکھیں ہم سب کی زندگیوں کے لیے خداوند برکت، رہنمائی، حکمت اور دنائی اور رہائی کا وسیلہ ٹھہرے۔ یسوع مسیح کے نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ خداوند کے جلالی اور مقدس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرے ساتھ نکالیں متی کی انجیل اس کا 4 باب۔ آج ہم ان 3 حوالوں پر غور کریں گے جہاں جہاں پر ہمیں خداوند یسوع مسیح کی آزمائش کا، کہ یسوع مسیح 40 دن اور 40 رات ابلیس سے آزمایا گیا، ان 3 حوالہ جات پر غور کریں گے۔ اور جب میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا کہ ذرا سوچیں کہ یسوع مسیح 40 دن اور 40 رات بیابان میں کیا کرتا رہا، کہ وہاں پر کیا ہوا، کیونکہ ہمیں 3 آزمائشوں کا ذکر ملتا ہے کہ 3 آزمائشیں ہوئیں، کیا ان سے زیادہ بھی آزمائشیں تھیں، کن کن آزمائشوں کا خداوند یسوع مسیح کو سامنا تھا، اور اس کا تعلق پرانے عہد نامہ کے اس 40 دنوں کے سفر کے ساتھ ہے کہ بنی اسرائیل کو خدا نے جب مصریوں کی غلامی میں سے نکالا تو کہا کہ 40 دن کا سفر ہے جو تم کو وعدہ کی زمین پر جانے کے لیے لگے گا، اور ان کی نافرمانیوں، ان کی آزمائشوں، ان کے امتحانوں کے باعث وہ 40 دن 40 سال میں بدل گئے۔ اور یسوع مسیح جیسے وہاں پر موسیٰ ان کی رہنمائی کر رہا ہے، ویسے ہی خداوند یسوع مسیح ہم سب کی کیا ہے، ہم سب کے لیے مثال ہے، جو 40 دن اور 40 رات کے اس امتحان میں اسرائیلیوں کی طرح ناکام نہیں ہوگا بلکہ کامیاب ہوگا۔ سو متی کی انجیل اس کا 4 باب، اس میں آج ہم دیکھیں گے کہ کیا کیا وہاں پر ہوا۔ پہلا والا متی کی انجیل 4 باب، اس کی پہلی آیت سے پڑھیں گے۔ اس وقت روح یسوع کو جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے، اور 40 دن اور 40 رات فاقہ کر کے آخر کو اسے بھوک لگی، اور آزمانے والے نے پاس آ کر اس سے کہا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں۔ اس نے جواب میں کہا، لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ تب ابلیس اسے مقدس شہر میں لے گیا اور ہیکل کے کنگرے پر کھڑا کر کے اس سے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تئیں نیچے گرا دے، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا اور وہ تجھے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے۔ یسوع نے اس سے کہا، یہ بھی لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ پھر ابلیس اسے ایک اونچے پہاڑ پر لے گیا اور دنیا کی سب سلطنتیں اور اس کی شان و شوکت اسے دکھائی، اور اس سے کہا، اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے تو یہ سب کچھ تجھے دوں گا۔ یسوع نے اس سے کہا، اے شیطان دور ہو، کیونکہ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ تب ابلیس اس کے پاس سے چلا گیا اور دیکھو فرشتے آ کر اس کی خدمت کرنے لگے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ اسی طرح میرے ساتھ ایک اور حوالہ دیکھیں، مرکز کی انجیل۔ مرکز کی انجیل اس کا 1 باب، اس کی 12 آیت سے ہم 13 آیت تک پڑھیں گے۔ مرکز کی انجیل 12 باب، اس کی 13 آیت۔ یہاں پر مرکز उस बियाबान के इम्तहान को कुछ इस तरह मुख्तसर तौर पर बयान करता है। मरकस की इंजील पहला बाब उसकी 12 आयत। और फील फोर रू ने उसे बियाबान में भेज दिया, किसे? यीशु मसीह को। और वो बियाबान में 40 दिन तक शैतान से अजमाया गया और जंगली जानवरों के साथ रहा, और फरिश्ते उसकी खिदमत करते रहे। यहां पर मुख्तसर बयान, खुदा का बंदा मरकस कहता है कि यीशु मसीह रूह कुद्दस के कहने के मुताबिक बियाबान में गया और वहां पर 40 दिन तक शैतान से अजमाया गया, 40 दिन तक। सो इस सवाल की हमें थोड़ी सी समझ आ रही है कि उन 40 दिनों में क्या हुआ। सिर्फ 3 आजमाइशें नहीं हुई, उससे ज्यादा भी आजमाइशें हुई होंगी, लेकिन दर्ज 3 की गई हैं। फिर मेरे साथ निकाले लूका की इंजील। लूका की इंजील उसका 4 बाब। लूका की इंजील उसका 4 बाब उसकी 1 आयत से। फिर यीशु रूहुल कुद्दस से भरा हुआ यर्दन से लौटा और 40 दिन तक रूह की हदायत से बियाबान में फिरता रहा और अबलीस उसे अजमाता रहा। उन दिनों में उसने कुछ ना खाया और जब वो दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी और अबलीस ने उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो इस पत्थर से कह के रोटी बन जाए। यीशु ने उसको जवाब दिया, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा। और इब्लीस उसे ऊंचे ऊंचे पर ले जाकर दुनिया की सब संतलतें पल भर में दिखाई और उससे कहा कि ये सारा इख्तियार और उसकी सारी और उनकी शानो शौकत मैं तुझे दे दूंगा, क्योंकि ये मेरे सपुर्द है और जिसको चाहता हूं देता हूं। बस अगर तू मेरे आगे सजदा करे तो ये सब तेरा होगा। यीशु ने जवाब में कहा, लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। और वो उसे यरूशलेम में ले गया और हैकल के किंगरे पर खड़ा करके उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने तई यहां से नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी हफाजत करें, और ये भी कि वो तुझे अपने हाथों पर उठा ले, मुबादा कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने जवाब में उससे कहा, फरमाया गया है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। जब अबलीस तमाम आजमाइशें कर चुका तो कुछ अरसा के लिए उससे जुदा हुआ, कुछ अरसा के लिए उससे जुदा हुआ। फिर यीशु रूह की कुव्वत से भरा हुआ गलील को लौटा और सारे गिर्दोनुवा में उसकी शोहरत फैल गई। वो उनके इबादत खानों में तालीम देता रहा और सब उसकी बड़ाई करते रहे। इन तीनों हवाला जात को पढ़ने का इसके पीछे जो सारी गुफ्तगू हो रही है कि यीशु मसीह को, जब यीशु मसीह ने अपनी खिदमत का आगाज किया, खुदा की मर्जी को पूरा करने के लिए जमीन पर आया, जो 40 दिन 40 रात उसने क्या किया? फाका किया, कुछ नहीं खाया। और यीशु मसीह अबलीस से अजमाया गया 40 दिन और 40 रात। और हम देखते हैं कि वो बियाबान में फिरता रहा और जंगली जानवरों से और दूसरे तमाम उन हालात का सामना किया जो बियाबान में होते हैं। ये वो बियाबान है जहां पर पहाड़ ही पहाड़ और कुछ बसने वाली या इंसानी बशर नजर नहीं आता। सो इन 3 आजमाइशों में जो 3 आजमाइशें यीशु मसीह की लिखी गई हैं, ते ये 3 आजमाइशें पुराने अहदनामा के उस जमायत की तरफ इशारा है कि उन्होंने 40 दिनों में जो सफर था उसे 40 साल का बना दिया। किस तरह अजमाए गए? सबसे पहली बात, आपको याद है कि इसराइली जब मिस्र से निकाले गए थे तो उन्होंने मूसा पर बुड़बुड़ाकर क्या कहा, हम मिस्र में खीरे और गोश्त और बहुत कुछ खाते थे, लेकिन तू यहां पर हमें भूखा मरने के लिए ले आया है कि हम यहां पर भूखे मरें। उन्हें रोटी की आजमाइश हुई और रोटी की भूख में उन्होंने क्या किया, खुदावन पर बुड़बुड़ाना शुरू किया। तो खुदा ने उनके बुड़बुड़ाने को सुना तो आसमान से क्या भेजा, मन। मन आसमान से बरसाया और फिर उसने तमाम उन जंगली बटेरों को जो लजीजा गोश्त था, इतना इतने बटेरे भेजे कि जमीन बटेरों से भर गई कि जमीन नजर नहीं आती थी, इतना गोश्त खाने को उनको दिया। और फिर दूसरी आजमाइश कि जब मूसा खुदा की हजूरी में गया कि खुदा से 10 अहकाम लेकर आए, तो पीछे आकर देखा तो बनी इसराइल ने कहा क्या किया, अपने लिए बछड़ा बना लिया और उन्होंने खुदावन खुदा को छोड़कर गैर मबूदों की इबादत की। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा के सिवा किसी और को सजदा ना करना, किसी और को, क्योंकि आसमान और जमीन के तले कोई और नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से निजात हो। इसका क्या मतलब है कि कोई और नाम, क्या कोई और नाम है? बथेरे लोग कहते हैं कि किसी और के नाम से निजात है, लेकिन क्या किसी और के नाम से निजात मिल सकती है? नहीं। क्या पालूस के नाम से निजात मिल सकती है? क्या पतरस के नाम से निजात मिल सकती है जिसने मुर्दा भी जिंदा किया? किसके नाम से निजात है? यीशु मसीह के। तो दूसरी आजमाइश उन्होंने क्या किया, आजमाए गए और उन्होंने खुदावन खुदा को सजदा करने की बजाय उस बैल को बना लिया और उसकी प्रस्तुति की। तो पहली रोटी की आजमाइश, फिर खुदावन खुदा के हजूर उन्होंने गुनाह किया और बछड़े को बना लिया, और तीसरी आजमाइश शानो शौकत कि हमारा सब कुछ वहां पर रह गया और हमें ये बात इसराइलियों में नजर आती है कि उन्होंने ये किया। सो तीन आजमाइशें उनके 40 दिन के सफर को क्या कर दिया, 40 साल का बना दिया। वो नाकाम हुए लेकिन यीशु कामयाब हुआ, यीशु कामयाब हुआ। यीशु मसीह ने रोटी पर कहा कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा। यीशु मसीह को जब अबलीस ने कहा कि अपने खुदावन खुदा को आजमा, तो इसराइलियों ने क्या किया था, खुदा को आजमाने के लिए बुड़बुड़ाए, हम पानी हमारे पास नहीं है, हम यहां पर प्यासे मर जाएंगे, हमारा खुदा हमको धोखे से यहां पर ले आया, हम तो चंगे थे इसराइल की गुलामी में, वहां पर हमें को खाने को और पीने को मिलता था। तो खुदावन खुदा ने क्या किया, यीशु मसीह जो कि पानी की चट्टान है उस पर मारा और उससे उनकी प्यास को बुझाया। ठीक उसी तरह के यीशु मसीह पर मार पड़ने से हम सबको शिफा मिलती है, उसी के खून बहने से हम सबको निजात मिलती है। सो इन तीन आजमाइशों में हमें थोड़ी सी समझ आ रही है कि तीन आजमाइशों में और कुछ क्या 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 हुआ। वो जंगली जानवरों के साथ रहा, बियाबान में रहा, उसकी आजमाइश अबलीस के साथ होती रही, ना कि सिर्फ हम कह सकते हैं कि जैसे अब हम में से बथेरों ने रोजा रखा है, जब हम किसी को समोसा खाते देते हैं तो हमारी जुबान पर भी पानी आता है कि हुई हुई किस तरह दवा। तो अबलीस चंद लम्हों के लिए जमाने के लिए आता है, और जब हम कहते हैं कि खुदावंद मुझे सब्र दे, खुदावंद मेरा हौसला बढ़ा, खुदावंद मेरी सोच इस खाने की तरफ ना जाए, मैं बोल के तेरी प्रस्तुति शुरू और सच्चाई से करूं, तो अबलीस चंद लम्हों के लिए हमसे जुदा हो जाता है, लेकिन फिर वो आ जाता है, फिर वो आ जाता है हमको बहकाने के लिए। सो रोजे का असली मकसद क्या है, अपनी उन तमाम नफसानी ख्वाहिशों का इनकार करना। अगर आपने रोजा रखा है तो इन आजमाइशों का आपको सामना होगा, और सबसे बढ़कर ये बात जहाँ कहीं भी जाते हैं ये सवाल किया जाता है कि पादरी साहब हम कब रोज़ा रखें और कब खोलें। तो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक हमारे मुख्तलिफ अकात हैं जो बाइबल मुकद्दस में मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ वक्त पर रोज़ा रखा। किसी ने सुबह को रखा, शाम को खोला। हम जब दाऊद की जिंदगी का वाक्या देखते हैं कि हत्थी उरिया को जब उसने तलवार से मरवा दिया और उसकी बीवी को अपनी बीवी बना लिया, उससे बेटा पैदा हुआ और खुदा ने नातन नबी को भेजा, तूने गुनाह किया है इसलिए इस बेटे को मैं मार दूंगा, और वो खुदा की हजूरी में बैठ गया। और क्या लिखा है, वो सुबह से रात तक खुदा की हजूरी में पड़ा रहा और उसने रोजा रखा, और वो फाका की हालत में खुदा की हजूरी में पड़ा रहा, मिन्नते मानता रहा कि शायद 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 खुदा तरस करे और ये बेटा बच जाए। दाऊद की जिंदगी में हमें पता चलता है कि उसने रोजा शुरू किया और उसके बाद उस बेटे को मरे 7 दिन हो गए और उसे पता नहीं, और भी फिर भी वो रोजे की हालत में है। तो 7 दिन बाद जब उसे पता चला तो उसने क्या किया, मुंह धोया, गुस्ल किया, तेल अपने सर पर डाला और खुदा के हजूर सजदा किया और कहा कि खुदा बाप, अब मैं उसके पास नहीं, अब वो मेरे पास नहीं आएगा, मैं उसके पास जाऊंगा। सो रोजे के मुख्तलिफ वक्त हमें मिलते हैं। यहूदी कैलेंडर के मुताबिक जो रोजा है वो शाम से शाम का है, शाम से शाम का है। लेकिन अगर आप रोजा रखना चाहते हैं तो 2 दिन का भी हो सकता है, 3 दिन का भी हो सकता है, और अगर आपकी कुव्वत है सिर्फ कि खुदा मैं तेरी हजूरी में 12 घंटे तेरी मर्जी के मुताबिक रोजा रखना चाहती हूं चाहता हूं, तो आप वो भी रख सकते हैं, क्योंकि ये आपके और खुदा के दरमियान है। दूसरा सवाल किया जाता है कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। बहुत दफा कहा जाता है कि गोश्त नहीं खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए। बाइबल मुकद्दस में जैसे अभी आयत पढ़ी गई थी, यूहन्ना की इंजील 8 बाप उसकी 32वीं आयत, पास अगर तुम सच्चाई से वाकिफ होगे तो सच्चाई तुमको आजाद करेगी। सच्चाई हमें क्या बताती है? बाइबल मुकद्दस में हमें नहीं जिक्र मिलता कि कहा गया है कि रोजे के दौरान या रोजे के सीजन में गोश्त खाएं या ना खाएं। ये सवालात गांव में हर इर्द गिर्द सब पूछते हैं कि हमें जुमे को नहीं रोजा खाना चाहिए, हमें तवे की पका के नहीं खानी चाहिए, हमें कोलों पर भून कर खानी चाहिए, हमें होटल की खानी चाहिए, हमें ये करना चाहिए वो करना चाहिए। बाइबल मुकद्दस सादा तौर पर हमें ऐसा कोई भी हुक्म नहीं देती, लेकिन ये बताती है कि जो कुछ खुदा ने पैदा किया है वो सब खाने के लिए अच्छा है। अगर आपका रोजे के दौरान ये कश्मकश, ये आपके जहन में शक की बात चल रही है कि मैं क्या खाऊं, तो याद रखें खाना पेट खाने के लिए बना है और पेट के लिए खाना बना है। ऐसे सवालात पर आप अपने उस रोजे की हालत में शक में ना पड़ें। हाँ, अगर आप कहें कि जी मैं रोजे के महीने में गोश्त खाऊंगा या खाऊंगी तो मेरे रोजे जाया हो जाएंगे, तो फिर ऐसा हो जाएगा। क्यों? शक। मेरे साथ निकालें रोमियो के नाम पालूस रसूल का खत, उसका 14 बाप। बीस आयत, रोमियो 14 बाब 20 आयत। यहां पर पालूस रसूल खाने पीने की ही बात कर रहा है कि किसी को गोश्त पसंद है, किसी को सब्जी, किसी को सब्जी नहीं पसंद, किसी को दाल, यानी कि जो कुछ भी खाने पीने में है। तो पालूस कहता है 20वीं आयत में, खाने की खातर खुदा के काम को ना बिगाड़, हर एक चीज पाक तो है मगर उस आदमी के लिए बुरी है जिसको उसके खाने से ठोकर लगती है। अगर आप गोश्त खाएं नहीं खाना चाहते तो ये आपके और खुदा के दरमियान है। बाइबल मुकद्दस ऐसा कोई हुक्म नहीं देती। अगर आप नहीं खाना चाहते तब भी आपके और खुदा के दरमियान है। मत कहें कि जी मैंने गोश्त खाना बंद किया है रोजों के अयाम में, तमाम लोग बंद कर दें। दूसरी बात, यही अच्छा है कि तू ना गोश्त खा ना मैं पी ना और कुछ ऐसा कर जिसके सबब से तेरा भाई ठोकर खाए। अगर आप किसी के लिए ठोकर का बायस हैं तो फिर उस खाने पीने से परहेज करें। कुछ ऐसे हैं रोजा रख के सारा दिन कार्टून देखते रहते हैं, ओ मेनू कुछ नहीं होएगा जी, मेरा ईमान बहुत मजबूत है, ये उसके और खुदा के दरमियान है। लेकिन अगर उसके इर्द गिर्द कोई और कमजोर या बंदा या बंदी आ जाए तो वो कहे के भरा जी भैन जी तुसी की कर दे पे रोजा रख के तुसी कार्टून देख दे पे हो, भीम वाले हिंदुआ वाले आओ वाले ते फलां वाले, और मेरा ईमान मजबूत आ। सो हमारा ईमान, मेरा तो ईमान मजबूत है, अगर इसका ईमान कमजोर है तो मैं उसके लिए क्या बना? ठोकर का बायस। क्या बना? ठोकर का बायस। सो हमें ठोकर का बायस नहीं बनना कि अगर हमारा गोश्त या मैं या कुछ और खाते हैं तो वो ठोकर का बायस बने। 22वीं आयत, जो तेरा एतकाद है वो खुदा की नजर में तेरे ही दिल में रहे। अगर आप रोजा 2 दिन का रखते हैं तो ये आपके और खुदा के दरमियान है। अगर आप उस रोजे के दौरान 10 बार दुआ करते हैं तो ये आपके और खुदा के दरमियान है। मत दूसरों को कहें कि जी मैंने 10 बार दुआ की और उसने 1 बार भी दुआ नहीं की। जो तेरा एतकाद है वो खुदा की नजर में तेरे ही दिल में रहे, मुबारक है वो जो उस चीज के सबाब से जिसे वो जायज रखता है अपने आप को मुलजम नहीं ठहराता। अपने आप को मुलजम नहीं ठहराना। वक्त थोड़ा है, आखिरी आयत पढ़ेंगे। मगर जो कोई किसी चीज पर शुबा रखता है, शुबा यानी कि शक करदा, शुबा रखता है अगर उसको खाए तो मुजरम ठहरता है, अगर खाए तो मुजरम ठहरता है। इस वास्ते वो एतकाद से नहीं खाता और जो कुछ एतकाद से नहीं वो गुनाह है। अगर हम शक करते हैं तो फिर वो शक क्या है? बेतकादी की वजह से गुनाह है। तो ये आपके और खुदा के दरमियान है। अगर आपको कोई आके कहे जी भैन जी आज जुमा वा ते इन्ने जुमे रोजिया दे विच तुसी गोश्त नहीं खाना, तो बाइबल मुकद्दस इसकी तालीम नहीं देती। बाइबल मुकद्दस इसके बारे में कहीं पर भी बयान नहीं करती। तो ये आपके और खुदा के दरमियान है। सच्चाई से वाकिफ होंगे तो सच्चाई हमें आजाद करेगी। हमें कोई और रस्म करने की जरूरत है? किस तरह हमें दुआ नीतनी चाहिए? बाइबल मुकद्दस सादा तौर पर कहती है कि जब तू रोजा रखे मुंह धो और खुदावंद खुदा ही तुझे रोजादार जाने, कोई और इस बात से वाकिफ भी ना हो। लेकिन हम जब रोजा रखते हैं, अम्मी घर का काम कर दे मेनू रोजा लग दिया, पाजी मैं रोजा रखे वा मेरे को थोड़ा काम लाओ। जब तू रोजा रखे, सो रोजे के बारे में बहुत सी सच्चाइयां हैं, कड़वी भी हैं, क्योंकि हमने बहुत सी, हम मसीही ईमान में हमने बहुत सी ऐसी बातें खुद से दर्ज कर ली हैं जो कि बाइबल मुकद्दस भी नहीं कहती। बहुत दफा बाइबल में उसका जिक्र भी नहीं आता और हम कहते हैं हाँ जी बाइबल च क्या गया वा फलां जगह च, लेकिन पता नहीं। याद रखें, सच्चाई से वाकिफ होंगे तो सच्चाई हमें आजाद करेगी। सो